औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम व्यूज़ और न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान सलमान हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम दुनिया की मुख्तलिफ़ ख़बरें जो हैं, हालात व वाक़ियात, मुख्तलिफ़ तज़िये जो हैं वो पेश करते हैं आपकी खिदमत में। पिछले प्रोग्राम में आपने मुलाहिज़ा किया होगा कि जिस तरह हमने सीरिया की सिचुएशन और इराक़ में जिस तरह के आए रोज़ बम धमाके हो रहे हैं, पाकिस्तान की सिचुएशन देख लें, पूरी दुनिया जो है वो जिस तरह, पूरी दुनिया को अगर ये कहा जाए कि जंग की तरफ धकेला जा रहा था पिछले दिनों में, और पूरी दुनिया यूरोपीय ममालिक की जानब से, मिडल ईस्ट में पूरी दुनिया की तरफ से ये कहा जा रहा था कि सीरिया में जो केमिकल अटैक हुए हैं उसको बहाना बनाकर ये कहा जा रहा था कि इन पर जंग की जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी नतायज बरामद हुए, इसके मुस्बत नतायज बरामद हुए मुख्तलिफ अकवाम की जानिब से। जिस तरह के आपने देखा कि बरतानवी पार्लियामेंट ने इस बिल को मंजूर नहीं किया, काफ़ी अक्सरियत से ये बिल को मंजूर नहीं किया गया। इसकी वजह ये भी बताई जा रही है कि अवाम का जो इस वक्त तासुर पेश किया जा रहा है कि अवाम इस वक्त जंग से बिल्कुल, वो इस वक्त दूर भाग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें बिल्कुल एक पुरअमन मुल्क चाहिए, पुरअमन दुनिया चाहिए कि जिसमें हम अपने ख़ानदानों के साथ और हम एक अच्छे तरीके से इंसान जो हैं वो तमाम इंसान आपस में ज़िंदगी बसर कर सकें। लेकिन कुछ ऐसे अनासिर हैं, कुछ दहशतगर्द अनासिर जिनको हम कहें कि जिन्होंने इस्लाम का लबादा ओढ़ा हुआ है, और जो शाम की सरजमीन पर जिस तरह कहा जाता है कि वो जिस तरह के हिजबुल्ला के साथ जंग में मसरूफ़ हैं, और मुख्तलिफ इस तरह के रिपोर्ट्स आई कि 90 से ज़्यादा मुमालिक जो हैं वो इस वक्त उनके बागी जो हैं दहशतगर्द जिनको कहा जाए लिबास पहन कर इस्लाम का वो सीरिया में पहुंचे हुए हैं और सीरियन अफवाज के ख़िलाफ़ जो है वो जंग कर रहे हैं। लेकिन खुदा ताला का फजलो करम है अल्हम्दुलिल्लाह कि उनको ऐसी शिकस्त हुई है कि वो फिर ऐसी जंग का जो है वो जिस तरह के कहा जा रहा था कि जंग की जानिब धकेल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह के उसके जो तबल बजाए जा रहे थे उससे हम काफ़ी दूर निकल आए हैं। यूएन का इजलास हुआ, उसमें काफ़ी पेशरफ्त हुई इस हवाले से। इसके अलावा यूएन का जो, यहाँ पर एक बहुत ही अहम पॉइंट मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि यूएन का जो एक बॉडी जो सीरिया में गई, जिन्होंने केमिकल अटैक्स को उनका मुआयना किया कि क्या वाकई जो बशारुल असद की गवर्नमेंट है उसने सीरिया में केमिकल अटैक्स किए हैं या नहीं किए। बाद में ये मालूम हुआ कि ये सीरिया की गवर्नमेंट नहीं जिसने केमिकल अटैक्स किए, बल्कि ये मुख्तलिफ ममालिक से लाए गए दहशतगर्द हैं जिन्होंने ये हमले किए और जिनको बुनियाद बनाकर एक पूरी दुनिया में जंग का शोर मचाया जा रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जंग जो है वो अभी काफ़ी हद तक जो है वो अभी टल चुकी है। यूरोपीय ममालिक जो हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं, उनको भी समझ आ चुकी है कि सिर्फ जंग जो है वही इसका राह हल नहीं है। हमें आपस में बैठकर डिप्लोमेसी के ज़रिए हमें कोई राह हल तलाश करना होगा ताकि तमाम इंसान जो पूरी दुनिया में बसते हैं वो एक अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार सकें। इसी तरह आपने गौर किया होगा कि पिछले दिनों यूएन का इजलास हुआ जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, ईरान और काफ़ी ममालिक जो हैं उनके सरबराहान तशरीफ़ ले गए, जो कि उन्होंने काफ़ी, आपने देखा होगा कि सीरिया की सिचुएशन जो है वो यूएन के इजलास में डोमिनेंट रही, उसको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस किया गया। इसके अलावा ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्कस किया गया। इसी तरह तमाम जो ये खबरें यूएन के इजलास से आती रहीं, अक्वामे मुत्तहिदा के इजलास से, इंशाल्लाह हम आगे प्रोग्राम में चलकर इन पर गुफ्तगू करेंगे कि जिस तरह के ईरान के सदर रूहानी जो हैं वो भी अमेरिका के दौरे पर गए, और जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि अभी डिप्लोमेसी के ज़रिए जो है वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को हल करने की कोशिश की जा रही है, और ईरान की तरफ से भी कुछ लचक का मुजाहरा किया जा रहा है, अमेरिका की तरफ से भी लचक का मुजाहरा किया जा रहा है। लेकिन कुछ अनासिर ऐसे हैं जो अभी भी इन दोनों, जो अगर ये दोनों लचक का मुजाहरा कर रहे हैं तो इन दोनों किसी भी कंट्री, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे ममालिक हैं जिनसे ये नहीं देखा जा रहा कि ये दोनों ममालिक आपस में मिलकर बैठ रहे हैं। इंशाल्लाह हम आगे प्रोग्राम में चलकर ये गुफ्तगू करेंगे कि क्या अहदाफ हासिल हुए रूहानी के अमेरिका के दौरे से। इसके अलावा हम दूसरा टॉपिक जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो पाकिस्तान में, आपको मालूम होगा कि मुख्तलिफ तालीमी इदारों से दहशतगर्दों को पकड़ा जा रहा है, जिनसे ये बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ तंजीमों से उनके रवाबित हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि ये तंजीमें किस तरह बाहर की ममालिक से उनको सपोर्ट मिलती हैं, उनको फंडिंग मिलती है। पिछले दिनों मीडिया में ये रिपोर्ट काफ़ी नशर होती रही कि दहशतगर्द पकड़े गए, जिस तरह के पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से दहशतगर्दों को पकड़ा गया, इसके अलावा इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से पकड़ा गया। लेकिन इसका मसला ये है कि ये खबरें सिर्फ़ एक दो दिन के लिए मीडिया के ऊपर आती हैं, लेकिन बाद में बिल्कुल इस तरह गायब कर दी जाती हैं। हुकूमत की तरफ से कोई इसका राह हल तलाश करने की कोशिश नहीं की जाती। हम कोशिश करेंगे कि हम पाकिस्तान में जो है वो राबता कायम करें और ये जानने की कोशिश करें कि पाकिस्तान में इसको जो तालीमी इदारों का माहौल बनाया जा रहा है, जो कि स्ट्रक्चर एक बना हुआ है उसको, और ये नेटवर्क जो दहशतगर्दों का, इसको किस तरह तोड़ा जा सकता है। तो इसके अलावा हम आगे चलकर और भी प्रोग्राम में काफ़ी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारा जो आज का टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि जिस तरह मैंने आपसे डिस्कस किया कि रूहानी जो ईरान के सदर हैं वो सीरिया और मुख्तलिफ जो इस तरह के टॉपिक हैं वो डिस्कस कर रहे थे। इसके अलावा अमरीका में जो है उनके यूएन के इजलास में काफ़ी अच्छे तरीके से जो है उनकी स्पीच सुनी गई और बाद में मुख्तलिफ टीवी चैनल्स ने उनका इंटरव्यू लिया। हम कोशिश कर रहे हैं कि ईरान में कुम के शहर में हमारे एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं मोहम्मद हुसैन सूरत वाला, उनसे हमारा रابطہ हो सके। जैसे ही रابطہ होगा इंशाल्लाह हम उनसे ये पूछने की कोशिश करेंगे, और हमें ये कंट्रोल रूम से बताया जा रहा है कि उनसे रابطہ कायम हो गया है। सबसे पहले मैं आपको स्टूडियो में खुश आमदीद कहूँगा। अस्सलामु अलैकुम। जी आगा, सबसे पहले तो आपको मैं स्टूडियो में खुश आमदीद कहूँगा कि आपने नहायत ही जो आपका बिजी शेड्यूल है उसमें से आपने वक्त निकाल कर अहले बैत टीवी के लिए आज के प्रोग्राम को जीनत बख्शी।
आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कहूँगा।
वालेकुम अस्सलाम। अगर जिस तरह के मैंने अभी प्रोग्राम के शुरू में कहा कि से जिस तरह पूरी दुनिया में जंग का शोर मचाया जा रहा था पिछले दिनों, और जिस तरह यूएन का इजलास भी अभी शुरू हुआ, जंग का जो थोड़ा शोर मच रहा था वो तो कम हो गया, लेकिन आजकल जो यूएन का इजलास हुआ, उसकी अक्वामे मुत्तहिदा का इजलास, उसमें ईरान के सदर जो हैं उनकी स्पीच को काफ़ी इम्पोर्टेंट लिया गया कि उन्होंने किस तरह न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्कस किया और सीरिया की सिचुएशन को जिक्र किया। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ईरानी सदर ने जो अमरीका का ये दौरा किया, उसके सफ़र के बारे में अगर आप कुछ हमें डिटेल बताएँ और इसके अहदाफ जो हैं वो अगर कुछ आप नाज़रीन के सामने बयान करें।
इस सफर के सिलसिले में सबसे अहम नुकता ये था कि इस साल जो इलेक्शन हुआ है ईरान में, इलेक्शन के नतीजे में मुंतखब सदर का ये पहला दौरा अमेरिका यानी न्यूयॉर्क के लिए था, यूनियन के लिए, और इस वजह से भी क्योंकि ये इनका पहला दौरा था और इलेक्शन में इन्होंने जो एजेंडा जिक्र किए थे और जो बातें जिक्र की थी खासतौर पर खारिजा सियासत के सिलसिले में, तो इस सफर को इंटरनल न्यूज एजेंसी भी और बाहर के भी जो मीडिया था उसको पूरी तरह से कवर कर रहा था। और इस सफर की इब्तदा आयतुल्ला खामेनेई हफ़िज़हुल्लाह के रिप्रेजेंटेटिव और उनके ऑफिस के जो रईस हैं उनकी अलविदाई तकरीब के साथ हुआ, और ये सफर यहाँ से शुरू होता है। एहदाफ के तौर पर खुद हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आगे रूहानी जिस वक्त ईरान से निकल रहे थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र किया था कि ईरान की तरफ से एक ऐसा चेहरा और एक ऐसी हैसियत कि जो दुनिया में सुलह सलामती और अमन अमान चाहती है, चाहता है, इस सूरत को, इस चेहरे को ईरान के लोगों के सामने वो पेश करना चाहते हैं, लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ईरान किसी से कभी भी लड़ने के मूड में नहीं है, बल्कि हमेशा दुनिया में अमन और सलामती का पैगाम है और इस मैसेज को लोगों तक देना चाहता है। और इसी जिम्न में इस बात को भी जिक्र किया जा सकता है कि उनकी वो स्पीच जो उन्होंने यूएन में दी थी उसको देखा जा सकता है कि जिसमें उन्होंने अपने इस मैसेज को और अपने इस हदफ को एकदम खुलकर जिक्र किया और यूनाइटेड नेशन ने एक एडवाइस भी दिया, एक आइडिया भी दिया कि इस साल को यूनाइटेड नेशन ऐसा साल कि जिसमें शिद्दत पसंदी, इफराद गरी और तुंद रवि के मुकाबले वाला साल नाम दिया जाए, क्योंकि दुनिया में जहाँ कहीं भी हालात बिगड़े हुए हैं वहाँ पर किसी न किसी तरह की शिद्दत पसंदी और इफराद गरी मौजूद है। आपने जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले बहुत अच्छे से इसको जिक्र किया, जैसे सीरिया का मसला, ये अहम मसला बना हुआ है। इसमें भी हम लोग बहुत महसूस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पर भी शिद्दत पसंदी की वजह से ये मुश्किल है। ये और सबसे हटकर इस वक्त दुनिया का जो सबसे बड़ा मसला है, खासतौर पर आलम इस्लाम के लिए, वो इस्लामिज्म का मसला है। ये भी शिद्दत पसंदी की एक बहुत बड़ी मिसाल है और शिद्दत पसंदी का खात्मा और शिद्दत पसंदी के नुमाइंदों का जाना ये सलामती के लिए और अमन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस मैसेज को हुज्जतुल इस्लाम रूहानी ने अपने स्पीच में लोगों के सामने कन्वे किया।
बिल्कुल, इसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरह सदर रूहानी अभी पिछले महीनों ही जो हैं वो मुंतखब हुए हैं और आवाम ने उन पर एतमाद का इजहार किया है, उनको वोट दिए हैं और काफ़ी भारी अक्सरियत से वो कामयाब हुए हैं, तो पिछले जब से जो है वो इनकलाब बरपा हुआ है तब से ये कहा जा रहा है कि किसी भी ईरानी सदर का किसी भी अमरीकी सरबराह से ये डायरेक्ट जो है वो रबता जो टॉक्स का हुआ है, तो इसको काफ़ी एक ब्रेक थ्रू कहा जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप?
जी, पिछले 35 साल में पहली मरतबा दो ईरानी प्रेसिडेंट आपस में एक दूसरे से गुफ्तगू किए हैं, ये तारीखी एतबार से बिल्कुल सही है। लेकिन इस सिलसिले में ये जानना बहुत जरूरी होगा कि ऐसा क्यों हुआ कि अमेरिकन प्रेसिडेंट और वेस्ट वाले, असल में आपने भी देखा होगा कि वेस्ट वाले खासतौर पर जैसे फ्रांस के हैं, स्पेन के हैं या और दूसरी जगह के जो लोग हैं, वेस्ट वाले जो है इस बार ईरानी प्रेसिडेंट से मिलने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे थे और उनकी मुलाकात हुई है और इस तरह से इतने ज्यादा वेस्ट के प्रेसिडेंट से मुलाकात किसी प्रेसिडेंट की ईरानी से ही हुई है। और जैसे कि आपने दिखाया कि अमेरिकन प्रेसिडेंट और ईरानी प्रेसिडेंट ने 35 साल के अरसे में ये पहली डायरेक्ट मुलाकात भी उस वक्त के जब ईरानी प्रेसिडेंट अपना दौरा खत्म करके ईरान की तरफ आना चाह रहे थे।
जी, हमें बताया जा रहा है कि रबता जो है वो ब्रदर मोहम्मद हुसैन सूरत वाला से मुनक़ता हो चुका है। वो बात कर रहे थे नाज़रीन के किस तरह सदर रूहानी जो हैं वो ईरान से जो है वो अमेरिका में अक़वामे मुत्तहिदा का इजलास जो है उसको अटेंड करने के लिए जाते हैं और काफ़ी जो है वहाँ पे 37 साल के बाद जो बताया जा रहा है कि किसी भी ईरानी और अमेरिकी सदूर जो हैं उनका ये आपस में रबता बताया जा रहा है कि ईरान में जब से इनकलाब बरपा हुआ है तब से ये रबता हुआ है और दोनों जानिब से जो है वो काफ़ी लचक का मुजाहरा जिस तरह के मैंने पहले भी बयान किया जा रहा है और मेन जो उनका वो बताया जा रहा है कि फोकस वो किस तरह शिद्दत पसंदी है और दहशत गर्दी के मसाइल हैं, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, तमाम जगहों पर तमाम इलाकों में वो जो दहशत गर्दी इस वक्त फैल चुकी है। इराक में आप जैसा कि हर रोज़ देखते हैं कि बॉम्बिंग्स हो रही हैं, हर रोज़ 79 लोगों को, मासूम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है और ऐसा एक शिया सुन्नी फसाद करवाने की कोशिश की जा रही है बिल्कुल पाकिस्तान की तर्ज पे कि शिया और सुन्नी को इस तरह आपस में लड़ाया जाए कि ये आपस में ही लड़ें और आपस में ही एक दूसरे को मारें। लेकिन जिस तरह बताया जा रहा है कि दुश्मन जो है उसकी साजिश नाकाम हो रही है, लोगों में शऊर है, बेदारी आ चुकी है, मिस्र की सूरत हाल आप देख लें, ट्यूनिस की सूरत हाल आप देख लें, इसी तरह काफ़ी ममालिक जो हैं वो इसके अलावा इराक की सूरत हाल बहुत गौर तलब है कि जिस तरह वहाँ पे लोगों को निशाना बनाया जा रहा है लेकिन लोग फिर भी कमिटेड हैं और अपने जो मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह ईरान के सदर रूहानी जो हैं वो अक़वामे मुत्तहिदा के 3 रोज़ा इजलास जो है वो इख्तिताम पज़ीर हो चुका है, इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उनसे दोबारा रब्ता कायम हो ब्रदर मोहम्मद हुसैन सूरत वाला से और हम उनसे डिस्कस बाकी मसाइल करें कि आज जो बहुत इम्पोर्टेंट आयतुल्लाह खामनाई की स्पीच हुई है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वो सदर रूहानी की सपोर्ट करते हैं, उनको बैक करते हैं कि जो डिप्लोमेसी में प्रोग्रेस हुई है हम उसको सपोर्ट करते हैं। काफ़ी अहम खबर ये बताई जा रही है कि आयतुल्लाह खामनाई जो कि सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उनकी तरफ से ये बताना कि हम रूहानी को सपोर्ट करते हैं ये काफ़ी अहम खबर है। इसके अलावा आज उन्होंने जिस तरह ये भी कहा साथ इसके कि हम अमेरिका पर बिल्कुल एतबार नहीं कर सकते और लेकिन ये तमाम जो बातें हैं ये गौर फिक्र हैं कि हम इस तमाम बातचीत को आगे लेकर बढ़ना चाहते हैं और जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको भी हम एक आसान तरीके से इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं ताकि तमाम दुनिया को हम ये एक मैसेज दे سکیں کہ ہم ایک امن پسند قوم ہیں، ہم شدت پسندی بالکل نہیں چاہتے، ہم کسی جنگ کو شروع کر سکتے ہیں، ہم کسی جنگ کو بھی شروع نہیں کر سکتے، ہم کسی بھی قسم کی شدت پسندی کو ہم بالکل، وہ پہلے بھی انکار کر چکے ہیں کہ جو نیوکلیئر ان کے ہتھیار ہیں وہ بالکل حرام ہیں، اور انہوں نے جیسا کہ کہا کہ ہمارے ریلیجن اس کی اجازت بھی نہیں دیتا، ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم یہ ہتھیار تیار کر سکیں۔ اور اس کے علاوہ کافی بریک تھرو یہ بتایا جا رہا ہے، مجھے بتایا جا رہا ہے کہ صورت والا جو ہیں وہ دوبارہ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں۔ میں ان سے یہ سوال کروں گا، آغا سب سے پہلے تو معذرت کہ ہمارا رابطہ منقطع ہوا۔
جی جی، میں بھی
اگر اس کے علاوہ جس طرح فرما رہے تھے کہ یہ 37 سال بعد بتایا جا رہا ہے کہ ان دونوں صدور کی ملاقات ہوئی ہے، تو اس کو آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ جی، جیسا کہ آپ پہلے بتا رہے تھے کہ 37 سال کے عرصے کے بعد جو ہے وہ امریکی اور ایرانی صدور کی جو ہے وہ ملاقات، یعنی اس طرف وہ بڑے ہیں، بات چیت کے طرف بڑے ہیں، تو اس کو آپ کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں؟
جی جی ہاں، یہ 35 سال کے بعد پہلی مرتبہ دو پریسیڈنٹس کی آپس میں ڈائریکٹ ملاقات، ڈائریکٹ فون پر گفتگو ہے۔
بالکل،
اور یہ گفتگو کے لیے بہت ضروری ہے یہ جاننا کہ ایران کے اندرونی حالات کیا تھے اور یہ لوگوں نے کتنا ریزسٹ اور کتنی مقاومت کیا ہے۔ پچھلے 35 سال سے ویسٹ کی طرف سے وہ سینکشنز جو ایران کے اوپر وارد ہوئے ہیں، اور ان سینکشنز کا مقابلہ کرتے ہوئے ایرانی جس اسٹیج کے اوپر پہنچے ہیں، تو اب سامنے دو طرح کے گروپس ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جو یہ سمجھ رہا ہے کہ سینکشنز اپنی لمٹ تک کے پہنچ گئے ہیں، ایرانیوں کو اب سینکشنز کے ذریعے سے ان کو ان کے گھٹنے نہیں ٹکائے جا سکتے ہیں، تو اب ان سے گفتگو کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ گفتگو کے اندر پوری خلوص نیت موجود ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ نہیں ان کے ساتھ ہم گفتگو ہی کریں اور یہی ایک راستہ ہے، بلکہ ان کی مجبوری ہے کہ اب وہ گفتگو کریں گے۔ اور ایک دوسرا گروہ بھی موجود ہے جو صرف اور صرف جنگ کے بارے میں سوچ رہا ہے ایران کے لیے۔ اسی لیے دو یا تین دن کے اندر جس طرح سے پریسیڈنٹ آف امریکہ نے اپنے اسٹینڈ کو چینج کیا ہے، یعنی پہلے روحانی سے بات کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈپلومیسی کے راستے کو اور گفتگو کے راستے کو رائے حل سمجھتے ہیں، لیکن جب نیتن یاہو سے گفتگو ہوتی ہے تو اس کے بعد فوراً یہ بیان دیا جاتا ہے کہ نہیں، ہمارے ٹیبل کے اوپر جنگ کا آپشن بھی رکھا ہوا ہے اور ہم ایران کو، ایران سے لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں اگر ایران ہماری بات نہیں مانتا ہے۔ تو یہ گفتگو صحیح ہے کہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ایران کے سامنے اب ان کی طاقت اور ان کے سینکشنز کی طاقت کافی نہیں رہی ہے، تو انہوں نے اس طرح سے گفتگو کیا ہے۔ اور اسی ضمن میں آج ایران کے سپریم لیڈر نے بھی ایک اسپیچ دیا تھا، اور اس اسپیچ میں اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ ایران کی جو ٹیم نیو یارک میں موجود تھی اور وہ ٹیم نے جو ڈپلومیسی کا راستہ اپنایا تھا اور جس طرح سے میٹنگز ارینج کی، لوگ نے دوسرے کنٹریز کے اتھارٹیز سے ملاقات کی ہے، تو یہ ملاقات بہت اچھی ملاقات ہے اور انشاءاللہ کہ یہ ملاقات نتیجہ بخش ہوگی۔ لیکن دوسری طرف نصیحت کرتے ہوئے بھی انہوں نے ایران کی ٹیم کو یہ نصیحت بھی دی ہے کہ آپ لوگ امریکن ٹیم کی طرف اور امریکن گورنمنٹ کی طرف بہت زیادہ حسن نیت سے نہ دیکھیے، کیونکہ ان کا رویہ اور کلن ویسٹ کا رویہ کسی بھی کنٹری کے لیے دو طرح کا رویہ ہے۔ جب تک کہ ان کی ہاں میں ہاں ملایا جائے، ان کے آنکھوں کے اشارے پر ناچا جائے اور ان کی باتوں کو پوری طرح سے قبول کیا جائے، تو وہ آپ کی تعریف کریں گے، آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن جب آپ اپنے منافع اور اپنے فائدے کے بارے میں سوچ کے ان کے سامنے کھڑے ہوں گے، تو وہ آپ کو برداشت بھی نہیں کریں گے۔ تو ان کو حسن نیت سے نہ دیکھا جائے، بلکہ ان کے کسی بھی قدم کے بارے میں یہ سوچا جائے کہ اس میں دشمن کوئی چال چل رہا ہے۔
اس کے علاوہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح آج انہوں نے اپنی، میں اسپیچ پڑھ رہا تھا ان کی اور ہم ویڈیو فوٹیج بھی جو ہے وہ ناظرین کو دکھا رہے ہیں، کہ جس طرح آج ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے اسپیچ کی اور ایرانی صدر روحانی جو ہیں ان کے سپورٹ کیا ہے، جو ڈپلومیسی میں ان کی پروگرس ہو رہی ہے امریکی سربراہان کے ساتھ۔ آگا میں آپ سے یہاں پہ ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا کہ ایران کی جو عوام ہیں جنہوں نے منتخب کیا ہے ایرانی صدر روحانی کو، وہ اس وقت ان تمام جو مراحل سے گزر رہے ہیں، وہ اس تمام سچویشن کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟
سلمان صاحب، آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے۔ آپ
جی، میں آگا میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟
جی آواز آ رہی ہے، آپ تھوڑا آہستہ۔
जी, मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि जिस तरह के आयतुल्ला खामनाई ने जो है वो आज स्पीच की है और ईरानी सदर रूहानी को बैक किया है, उनको सपोर्ट किया है, तो ईरानी आवाम जो है जिन्होंने सदर रूहानी को मुंतखब किया है पिछले इलेक्शन में, उनका इस वक्त आप क्या रद्द अमल देख रहे हैं ईरान की सरजमीन पर?
जी, पिछले 35 साल में, यानी जिस वक्त ये दोनों प्रेसिडेंट्स के दरमियान मुजाकिरा हुआ, तो टीवी के ऊपर मैं एक शो भी देख रहा था और उसमें लोगों से ये सवाल किया जा रहा था कि आपकी नजर इस बारे में क्या है कि दो प्रेसिडेंट ने आपस में गुफ्तगू की है। तो लोगों के जो जवाब थे और वो लोग जिन्होंने सदर को मुंतखब किया यहाँ पर, वो तकरीबन इस तरह का जवाब दे रहे थे कि 35 साल दुश्मनी, 35 साल जुल्म मजालिम, 35 साल में जो हम पर सेंशन और पाबंदियां लगी हैं वो एक फोन से तो हल होने वाली नहीं है। और ये फोन शायद एक जरिया बने इस बात का कि जो जालिम जुल्म कर रहा है वो अपने जुल्म में कम से कम हो और मजलूम अपने इक्तदार, अपनी इज्जत और अपनी करामत की तरफ वापस हो। तो उमूमन लोग जिन्होंने 35 साल तक की इन पाबंदियों को झेला है और उसके सामने रेजिस्ट किया है, तकरीबन अक्सरियत का ये मानना है कि ये एक फोन से हल होने वाली चीज नहीं है और इस चीज के लिए जरूरी है कि जालिम अपनी गलती को कबूल करें और वो लोग के जिन्होंने पाबंदियां लगाई हैं वो पाबंदियों को उठाएं और वो लोग के जो इस कंट्री के मुसल्लम हक को और एक ऐसी चीज को कि जो इंटरनेशनल लॉज में भी कबूल शुदा है और वो न्यूक्लियर एनर्जी का मसला है, उसको वो लोग कबूल करें इस नेशन के लिए भी कि ये भी उसको सही से इस्तेमाल कर सकते हैं, इनका भी हक है। ये सब जब वो मानते हैं तो आगे किसी टॉपिक के ऊपर उनके गुफ्तगू हो सकती है। गुफ्तगू इन टॉपिक्स के ऊपर के जो इनके मुसल्लम हुकूक हैं, दुनिया उसको कबूल करती है कवानीन के एतबार से, उन कवानीन के सिलसिले में और उन हुकूक के सिलसिले में गुफ्तगू किसी भी तरह से जायज नहीं है। और पब्लिक भी इस बात की गवर्नमेंट को इजाजत नहीं देती है, या जिस तरह से इंटरव्यूज में मैंने सुना है लोगों के, कि पब्लिक भी इसका अपोज करती है कि जो हमारे मुसल्लम हुकूक है उन पर गुफ्तगू नहीं होगी, बल्कि गुफ्तगू अब इस पर होगी कि पाबंदियां कैसे उठाई जाए और किस तरह से एतमाद एक दूसरे का बढ़ाया जाए।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आगा जान कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला, आपका शुक्रिया अदा करते हैं अहले बैत टीवी की जानिब से। रात के इस पहर में आपने टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में जो है वो आपसे फिर इंशाल्लाह हम आपका तज़िया जानने की कोशिश करेंगे, बहुत शुक्रिया जी। ये हमारे साथ ईरान से कुम से मोहम्मद हुसैन सूरत वाला मौजूद थे, जो कि हमें ईरान और सीरिया और इसके अलावा जो अक़वामे मुत्तहिदा का इजलास हुआ पिछले दिनों उसके बारे में आगाह कर रहे थे। बहुत ही मुफस्सल तरीके से उन्होंने गुफ्तगू फरमाई कि किस तरह ये जिस तरह जंग की कोशिशें शुरू की जा रही थी, लेकिन कुछ यूरोपीय ममालिक की जानिब से उनकी पार्लियामेंट्स ने अपने बिल पेश किए पार्लियामेंट्स में, फिर उनको मंजूर नहीं किया गया, इसी तरह वो जंग से बच गए। लेकिन बाद में जिस तरह यूएन का इजलास आया तो ईरानी सदर और मुख्तलिफ ममालिक के जो सरबराहान हैं उन्होंने इसमें शिरकत की और किस तरीके से गुफ्तगू की गई ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि 35 साल के बाद ईरानी आवाम जो है वो ये देखना चाह रही है कि हमसे किस वक्त जो है वो ये सेंक्शंस, जो पाबंदियां 35 साल से कौम पर लगाई गई हैं, वो कब उठाई जाती हैं। और वो कह रहे हैं कि किसी तरीके से भी वो अपने मुसल्लम हकूक जो हैं वो उनसे पीछे हटने को तैयार नहीं है, लेकिन वो ये चाह रहे हैं कि हमें अब बिल्कुल टेबल पर आके बैठ जाना चाहिए और लचक का मुजाहरा करना चाहिए और दोनों तरफ से डिप्लोमेसी जो है जिस तरह दरवाजे खुल चुके हैं उसको आगे बढ़कर एक अच्छे तरीके से हसन तरीके से उसको हल करने की कोशिश करनी चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि हमारा पाकिस्तान में भी राबता हो और हम गुफ्तगू करें, जिस तरह प्रोग्राम के शुरू में मैंने आपसे फरमाया कि हम गुफ्तगू करेंगे कि जिस तरह पाकिस्तान में मुख्तलिफ तालीमी इदारों में दहशतगर्द अनासिर जो है उनको परवान चढ़ाया जा रहा है, उनकी फंडिंग की जा रही है मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से, जिस तरह तालीमी निज़ाम और उसको तालीमी इदारों का माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही हैं, जिस तरह के तमाम मुख्तलिफ जो है वो कम्यूनिटी से तालब इल्म जो हैं वो पढ़ने आते हैं यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेज़ में, लेकिन ये दहशतगर्द अनासिर जो हैं ये तालीमी इदारों का माहौल ख़राब कर रहे हैं ताकि वहाँ से जो नस्ल पढ़ लिख कर निकलती है उनके जहन को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। हम कोशिश करेंगे कि हमारा रब्ता हो। इस वक्त मुझे बताया जा रहा है कि हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से अत्तर इमरान ताहिर साहिब, जो कि इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के मरकज़ी सदर हैं और अभी कुछ दिन पहले ही वो दोबारा इस ओहदे पर फायज़ हुए हैं, उनका इंतखाब किया गया है। मैं उनको स्टूडियो में खुश आमदीद कहूँगा। अस्सलामु अलैकुम।
जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।
जी आगा, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में काफ़ी रात का वक्त है और आपने हमारे अहले बैत टीवी के लिए वक्त निकाला।
बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह।
जी आगा, सबसे पहले तो जिस तरह मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कन्वेंशन जो है वो मरकज़ी मुनक़िद किया गया लाहौर की सरज़मीन पर इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से, और उसमें आपका दोबारा इंतखाब अबल में लाया गया, तो इस हवाले से आप नाज़रीन को कुछ अगर कन्वेंशन के बारे में बताना चाहेंगे कि किस तरह तमाम शहरों से जो हैं वो तमाम शहरों से मुख्तलिफ तालीमी इदारों के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें शिरकत की और उनका क्या जोश व खरोश था?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक आईएसओ पाकिस्तान के 42वें सरना उनके मुस्तकिन जहाँ कन्वेंशन के नाम से आपको खबर है, अल्हम्दुलिल्लाह आईएसओ पाकिस्तान को वजूद में आए हुए 42 साल हो चुके हैं। अपनी तासीस से लेकर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह आईएसओ पाकिस्तान हर साल जो सालाना मर्जी कन्वेंशन भरपूर जोश खरोश के साथ मनाती है। इस कन्वेंशन का बुनियादी मकसद मुल्क के गोश किनार से आए हुए तलबा को जो है एक ऐसी फिक्र के साथ मरबूत करना है, एक ऐसे निज़ाम के साथ मरबूत करना है कि यकीनन निज़ाम विलायत है, निज़ाम विलायत जिसकी बुनियाद यकीनन निज़ाम इमामत और उससे में आगे जाएं तो वो वही निज़ाम है जिसकी बुनियाद खुद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डाली। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो पाकिस्तान में 42 साल से ये काम कर रहे हम दे रही है मुल्की गोश किनार से हुए नौजवान यहाँ पे आए इस कन्वेंशन से न सिर्फ अपनी फिक्री की तरफ जाते हैं बल्कि खुद कल्चर का जो एक्सचेंज होता है उससे भी खुद एजुकेशनल मोटिवेशन और खुद मुआशरे के अंदर आके उन्हें एक्सपोजर मिलता है कि उनका जो है न सिर्फ पाकिस्तान की सरजमीन के किसी कोशिश किसी मुस्तक के अंदर करते हैं बल्कि उनका किरदार आलमी भी जो है उसी तरह उभर के सामने आ सकते और उनके जो है खुद वो पाकिस्तान के सिर्फ किसी बड़ी तब्दीली का मजर बन सकते हैं बल्कि दुनिया की क्या कर सकते हैं।
बिल्कुल, इसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरह आपका दोबारा इंतखाब अमल में लाया गया, तो आप इस हवाले से कुछ बताइएगा कि जिस तरह आप पिछले साल भी आपने काफ़ी काम किया इस तंजीम के हवाले से, मुख्तलिफ तालीमी इदारों में आपने विज़िट किया, गिलगित और बल्तिस्तान तक आपने विज़िट किया, तो आपको जो तालीमी इदारों में नौजवान हैं उनकी जानिब से कैसा रिस्पॉन्स मिलता है आपको?
मैं अर्ज करना चाहूंगा कि मेरी जाती नातवानी अपने तई जो है मैटर करती है, बहरहाल तौफीकात खुदाबंदी जो है दौरान मसूलियत जो शामिल आ रहती है उसका इजहार इंसान जुबान से नहीं बल्कि वो चीजें जस्ट लम्स की जा सकती हैं। जहां तक नौजवानों का मामला है अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अगर हम ये देखें कि नौजवानों के अंदर वो फिक्री रुश्त जो है पैदा हो रहा है और नौजवान यकीनन अपने उस प्यास को बुझना चाहते हैं। अगर हम उनके लिए साफ शफाफ चश्मों इंतजाम नहीं करेंगे जो कि यकीनन हमारे पास कुरान और हदीस से मुताबिक की सूरत में मौजूद है तो वो यकीनन जो है सूरत की तरफ जाएंगे, उन चश्मों से जाकर पानी पियेंगे जो गदले होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में आईएसओ पाकिस्तान वो नजरियाती तलबा तंजीम है जो इनकलाब से पहले भी जो है इनकलाब की जमीन साज के लिए काम कर रही थी। जब इनकलाब इस्लामी ईरान वजूद में आता है और इमाम खमेनी रहमतुल्लाह की क्यादत में तो उसके असरात को दुनिया में बिलाहम और सरजमीन पाकिस्तान में बिलखसूस मुंतकिल करने में इन्हीं इमामिया नौजवानों ने शहीद कैद आरिफ अल हुसैनी और डॉक्टर मोहम्मद अल नकवी की बाबसीरत क्यादत में आईने से ज्यादा शफाफ अंदाज में इसको मुनक़िद किया, अपना किरदार अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह आईएसओ पाकिस्तान के नौजवान हर उसी तरह जोश खरोश के साथ अपने मसूलियत का इस्तकबाल करते हैं, न सिर्फ इस्तकबाल करते हैं बल्कि उनके साथ इत्तेहाद के साथ काम करते हैं और अपनी न सिर्फ अपनी जाति तरबियत के लिए करते हैं बल्कि मुआशरे को जो है एक इस्लामी मुआशरे में बदलने के लिए उनका किरदार हमेशा से बढ़ते रहे और वो उसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तरफ से बहुत अच्छे जश्न से हम अपनी जो है कोताहियों और सुस्तियों के उन्वान से यकीनन हाजिर हैं जो सबका साल में कमी कोताहियां है चूंकि इस साल खुदा के लुत्फ करम से इंशाल्लाह ऐसा किया है कि नौजवानों का जिस तरह का हमारे साथ शामिल है इंशाल्लाह हम इस यूथ को नजरती यूथ में बदल।
अच्छा आगा, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा यहाँ पे कि उलमा जो है उनकी तरफ से आपको नौजवानों की तरबियत में जो है आपको जाहिरी बात है कि उलमा की तरफ भी रुजू करना पड़ता है, तो इस हवाले से जिस तरह इस कन्वेंशन में बताया जा रहा है कि शेख आयतुल्ला शेख मोहसिन अली कुम्मी जो हैं वो रहबर के जो नुमाइंदे हैं उनके दफ्तर में मौजूद होते हैं, मसूल हैं उनके, उन्होंने भी शिरकत की, तो इस हवाले से नौजवानों का जोश खरोश कैसा था?
मैं इतराज़ करना चाहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अपनी तासीस लेकर आज तक उस जब निजाम के साथ उसी तरह मरबूत है जिस तरह अपनी तासीस के पहले दिन से थी। और ना सिर्फ हमारा रैबियत के साथ, हमारे उस निजाम के साथ बात ही रहा है, बल्कि हमारा फिक्री शो भी रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जब इस साल कन्वेंशन में रहबर-ए-आज़म सैयद अली खामनेई उनकी तरफ से मस्जिद दफ्तर रहबरी हजरत आयतुल्लाह मोहसिन खुमैनी और रहबर के पाकिस्तान में जो नुमाइंदे हैं नुमाइंदा वली फकीह हजरत आयतुल्लाह अबुल फजल बाउदीनी, वो उस आलमी बेदारी कॉन्फ्रेंस और शबे जुदा में और आखिरी रोज जलसे आम सच मस्जिद सदर की अनाउंसमेंट का मरला और उसमें तशरीफ लाए तो नौजवानों का जज्बा देखने वाला था। अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ नौजवानों का बल्कि खुद हमारे इन मौजूद मेहमानों का जो कि रहबर की तरफ से उनके लिए ना सिर्फ पैगाम लाए थे बल्कि सलाम भी लाए थे और उन्होंने अपनी गुफ्तगू में हमारा इस चीज का तस्करा किया कि आप इमाम या नौजवान रहबर की उम्मीद है, रहबर आपको से अपनी आंखें ताबीर करते हैं और कहते हैं कि आयशो का नौजवान मेरी आंखों की ठंडक है, मेरी आंखों का नूर है। तो यकीन फिर मुख्तलिफ किस्म के पैगाम भी दिए और उसमें जो सह पैगाम उन्होंने रहबर मिने जहाँ की तरफ से खुद हमारे लिए जो है दिया वो ये था कि आईएसओ के नौजवानों से हम ये तकाजे करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह वो तालीमी मैदान के अंदर इस जिहाद को जारी रखेंगे जिस उन्होंने माजी में अपने इस चीज को साबित किया और खुद पाकिस्तान में वहादत को जो फरोग देने में आईएसओ के नौजवानों से ज्यादा तवक्को करेंगे कि ये गरज इतना मुश्किल है लेकिन आईएसओ के नौजवान इंशाल्लाह इस उम्मीद के साथ वो इस काम को सर अंजाम देंगे। तो यही एक जो है हमारे लिए हुज्जत भी है, हमारे लिए एक हुक्म भी है, हमारे लिए पैगाम भी है। इंशाल्लाह हम इस आज़म का इजहार करते हैं और इस आज़म पे कायम है कि इंशाल्लाह हम अपने उस रहबर की उस आरजू को आरजू इबादत है जो उनके तालीमी मोर्चों को नौजवानों को तालीमी मोर्चों के ऊपर लड़ना चाहिए इंशाल्लाह की सरहदों की हिफाजत के लिए हम वक्त जा रहे हैं जान के आखिरी उस तक फोन के आखिरी कतरे तक इंशाल्लाह उस निजाम के साथ मजबूत रहेंगे जिस तरह शहीद कैदराम हसन अलहुसैनी ने फरमाया था कि जो है चाहे सब के सब मुझे छोड़ के चले जाएं लेकिन मैं उनके आखिरी कतरे तक निजाम विलायत फकीह से एक इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। यकीन हम भी उसी आयत के साथ इंशाल्लाह इस निजाम से उसी तरह मजबूत रहेंगे, एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे हमारे जिसमें खून का खतरा।
आगा ये तो तंजीम का जो है वो आपने मुख्तसर सा तारुफ करवा दिया, अब मैं आपकी तवज्जो जिस जानिब मबजूल करवाना चाहूँगा वो पाकिस्तान के तालीमी इदारों की तरफ है कि जिसमें दहशत गर्दों को बैरूनी इमदाद के ज़रिए परवान चढ़ाया जा रहा है। इस मामले में इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह के पंजाब यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो है UET लाहौर में उन दोनों से दहशत गर्दों को पकड़ा गया है, तो इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने इसका क्या स्टेप लिया है और हुकूमत से क्या मुतालबा किया है?
यकीनन इस उसकी तरफ बढ़ने से पहले थोड़ा सा ये अर्ज करना चाहूंगा कि जो हमारे जज्बात हैं या जो हमारे एहसास हैं ये बात इंतहाई काबिल अफसोस है कि तालीमी इदारे इन्हें इल्म की दरसगाह होना चाहिए था और वो जहाँ से ऐसे चश्मे फूटते हैं जहाँ से तिश्नगान इल्म अपनी इल्मी प्यास हो जाते हैं ये वो दरसगाह जहाँ से खुमैनी जैसे मसीहा मुआशर नसीब हुए ये यकीनन वही दरसगाहें थी जहाँ से मुर्तजा मुतहरी जैसे दानिशवर फ़ख्र इस्लाम से पाकर इल्मी फिक्र का पेश खैमा भरते हैं और ये वही दरसगाहें हैं जहाँ से इलाम इकबाल और बाबरी कौम जैसे गौर आबदार खल्क होते हैं। लेकिन सर आज हम उन तालीमी इदारों की सूरत हाल को देखें जैसा कि आपने अपने उसमें सवाल में भी जिक्र फरमाया कि वो जिन्हें नजरियाती मोर्चे होना चाहिए था आज दहशत गर्द मौजूदा बन चुके हैं। आज जब हम देखते हैं चाहे वो जामे पंजाब हो चाहे वो UET लाहौर हो जिन्हें नौजवानों में अगर हम देखें तो वहां पे दहशत गर्द अनासर जिनका कहीं ना कहीं जाके कैदर के साथ बनते हैं इनकी सरपरस्ती कौन लोग कर रहे हैं। मुख्तलिफ मजहबी और सियासी जमातें अपने मफादात खातिर तलबा तंजीमों को इस्तेमाल करती हैं
वो अपने आप मुस्तकिल इस्लामी स्पीकर के हामिल करने वाले दावे सियासी जमातें जिनके स्टूडेंट विंग, अगर हम उनके स्टूडेंट के बारे में बात करना चाहें तो जब जो है वहां कारकुन उनसे पूछा जाता है और वहां से दहशत गर्दों को गिरफ्तार किया जाता है तो आप कहते हैं कि ये दहशत गर्द से बदनाम गिरोह से वाबस्ता लोग उनका जांच रास्ता कहाँ होता है, वो पाकिस्तान के सरजमी में अपने आप को इस्लामी इबादे के अंदर रखते हुए एक ऐसी इस्लामी नजरियाती अपने आप को कहने वाले इस्लामी जमीयत तलबा के कारकुन है, तो यकीनन ये सवालिया निशान है खुद उस जमात के ऊपर, खुद उस बबिंग के ऊपर जो अपने आप को मौलाना मौदूद की फिक्र की हामिल जमात कहती है। अब मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहूंगा कि जब हम बात करते हैं तालीमी इदारों के अंदर इस तरह की दहशत गर्द अनासर की मौजूदगी का, तो ये बात न सिर्फ उस जमात के लिए मुश्किल है और उस जमात के उस किरदार के ऊपर एक सवालिया निशान छोड़ती है बल्कि खुद पाकिस्तान की उस इंतजामिया के ऊपर भी सवालिया निशान छोड़ती है। ऐसा पाकिस्तान अपना वाज़ह मौक़िफ़ रखती कि पाकिस्तान में तालीमी इदारों के अंदर हमारा जो बुनियादी मकसद है वो नौजवानों के अंदर उस फिक्री रुश्त को परवान चढ़ाना है, वो नौजवानों की तालीम और तरबियत का बंदोबस्त करना है, वो नौजवानों को इस कदर एक ऐसा नौजवान तैयार करना है, एक ऐसा तालिबे तैयार करना वो पाकिस्तान की नजरियाती और जोग्राफी सरहदों की तहफ़ कर सके। तो जब हम ये देखते हैं तो दूसरी तरफ वो मजहबी तंजीमें जो अपने आप को मजहबी कहती है लेकिन वो इन दहशत गर्दों की सरपरस्ती करती नजर आती है, जमात इस्लाम की हो जमीयत इस्लामी जमीयत तलबा हो, हम उनसे ये उम्मीद करेंगे कि अगर वो अपने आप को मौलाना मौदूद की फिक्र की हामिल जमात कहते हैं तो उन्हें अपने अंदर इन काली भेड़ों को मुशख्खस करके निकालना होगा, तो अपने असूली मौके दुनिया को ये दावा करा सकें कि उनका इस इंतहा पसंद फिक्र से कोई ताल्लुक नहीं। अब हम इसके हल की तरफ अगर आना चाहें कि तालीमी इदारों को किस तरह इस तरह की दहशत गर्द अनासर से पाक किया जा सकता है तो मैं दो तीन नुकात के अंदर इंशाल्लाह बात करके आपके इस सवाल का जवाब खत्म करूंगा कि बुनियादी इस वक्त जो है तालीमी इदारों के अंदर असला फरोग पर है। सबसे पहला काम यह करना होगा कि यहाँ से तलबा को इस कलाशनकोफ कल्चर की वजह उनके हाथ में किताब थमाना होगी कि वो अपने अपने बुनियादी उसी मैदान में वापस लौटे, उन्हें डीवेपनाइज करना होगा। दूसरा तालीमी इदारों और बिलखसूस हॉस्टल्स के अंदर से वो जो नॉन स्टूडेंट्स हैं उनके खिलाफ जरूरी है, जब तक वो स्टूडेंट जो 10-10 साल यूनिवर्सिटीज के अंदर इलीगल अलॉटमेंट्स के तहत रहते हैं जब तक वो मौजूद रहेंगे ये माहौल रहेगा। और तीसरा दहशत गर्दों से पाक तालीमी इदारे। चौथा सबसे अहम बात करना चाहूंगा कि इससे पहले जब तक स्टूडेंट यूनियंस मौजूद थी जो तलबा के हकूक के लिए काम करती थी और बुनियादी अपने तालीम और तरबियत एजेंडे को आगे बढ़ाती थी, आज जब से उनके ऊपर मुशर्रफ दौर के अंदर जो है बैन किया, जरूरत है इस अमर की के हुकूमत पाकिस्तान कंट्रोल्ड स्टूडेंट यूनियंस बहाल करें और खुद तालीमी इदारों के अंदर वो जो इंतजामिया है वो गैर सियासी होने चाहिए, वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट सियासी नहीं होनी चाहिए बल्कि वो मेरिट की बुनियाद पर होनी चाहिए। अगर इन चीजों को तालीमी इदारों के अंदर देखा जाता तो इंशाल्लाह फिर उसी जगह पर वापस लौटेंगे जहाँ से इकबाल जैसे, जहाँ से कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लोग इंशाल्लाह परेशान चढ़ेंगे।
बिल्कुल, आगे आपसे यहाँ पे लास्ट सवाल मैं करना चाहूंगा कि जिस तरह आपको दोबारा एक साल के लिए मुंतखब किया गया है तो आपके क्या अहदाफ हैं कि आप इस तंजीम को जो है वो किस जानिब लेके और के कितनी तरक्की जो है वो उसकी राह पे डालना चाह रहे हैं, किस किस्म के इकदाम आप कर रहे हैं इस वक्त?
मैं अर्ज करना चाहूंगा कि इससे पहले जब कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं था तो आईएसओ को मुख्य समाजों के भी उसी तरह अपना रोल प्ले करना पड़ता था। अल्हम्दुलिल्लाह अब मुख्तलिफ सियासी प्लेटफॉर्म मौजूद हो चुके हैं, वो काम जो आईएसओ अपने तमाम के क्या करती थी आईएसओ ने उन कामों को उनके सपोर्ट किया और खुद को उसी तालीमी और तरबीती मैदान के अंदर लेके वापस आईएसओ यूनिवर्सिटी के अंदर आईएसओ एक बेहतरीन अंदाज में आगे पनप रही बढ़ रही है। तो हमारा बुनियादी अदब इस साल का अगर मैं अर्ज करना चाहूंगा कि हमारा हमने इस साल को किस नाम से मनाना है या इस साल का हमारा बुनियादी हदफ क्या होगा तो वो यकीनन तालीम और तरबियत होगा, नौजवानों को उनके करियर को मान से खुद मुआशरे के लिए मुफीद तरीके तौर पर पैदा करना, खुद उनके अंदर नौजवानों के अंदर उस फिक्र रुश्त को और उस फिक्र इर्तका को आगे लेके चलना चल ये हमारा बुनियाद होगा। खुद दूसरा खुद उसी अपने दिलों की धड़कन और अपने रहबर के उस पैगाम से संवाद करते हुए कि हम इस हल को जिहाद इल्मी के तौर पर इंशाल्लाह बनाएंगे और पाकिस्तान के अंदर जो वहादत एक अंसर है इंशाल्लाह उस वहादत को अमली तौर पर आगे लेके चलने के लिए जो हम रोल प्ले कर सकें इंशाल्लाह रोल प्ले करेंगे।
इंशाल्लाह आगा आपकी गुफ्तगू का बहुत बहुत शुक्रिया, महले वैद टीवी की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने रात के इस पहर में हमारे लिए टाइम निकाला। और आपसे हम खुसूसी तौर पर गुजारिश करेंगे कि हमें तमाम हमारी अहले बैत टीम को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू फरमाई इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के मरकज़ी सदर, जिनका इंतखाब कुछ दिन पहले ही अमल में लाया गया है, उनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे कि किस तरह अभी 3-4 दिन पहले ही उनका इंतखाब अमल में लाया गया और मुख्तलिफ़ उलमा ने इस कन्वेंशन में जिसमें उनको सदर चुना गया उसमें शिरकत की, जिसके आपने मुख्तलिफ़ तस्वीर भी देखी कि किस तरह मुख्तलिफ़ मरकज़ी सदूर जो पहले भी गुजर चुके हैं उन्होंने भी शिरकत की और नौजवानों में एक ऐसा जज्बा उभारने की कोशिश की कि किस तरह ये नौजवान तमाम मिलकर वहादत का सबूत दे सकते हैं और मुआशरे को एक, जिस तरह कहा जाता है कि मुआशरे में एक भाईचारे की फ़िज़ा को कायम कर सकते हैं, मुआशरे को एक ऐसी जानिब लेकर जा सकते हैं जिसका ख्वाब इमाम खुमैनी ने और शहीद मुर्तज़ा मुतहरी ने देखा था। इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि तमाम नौजवान जो हैं वो इस सबक पर अमल करते हुए इमाम खुमैनी के अफकार जो हैं और शहीद मुतहरी के अफकार उन पर अमल करें और मुआशरे को एक ऐसी जानिब लेकर चलें कि जिस तरह शहीद हुसैनी ने भी यही कहा था कि ये हमारे जो आईएसओ के नौजवान हैं ये हमारी आंखों का नूर है, और बल्कि आईएसओ ने बल्कि तमाम जो तंजीमें हैं उनके नौजवानों को ऐसा किरदार अदा करना चाहिए कि खुदा ताला बल्कि ये जहन में सोच कर करना चाहिए कि वो अपने इमाम के लिए काम करें। बहुत शुक्रिया मैं अदा करना चाहूँगा ब्रदर अतर इमरान ताहिर साहब का कि उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला, और हमारा जो इस वक्त नेक्स्ट सेगमेंट का टाइम है वो हमारा पाकिस्तान से रिलेटेड टॉपिक को मैं डिस्कस करना चाहूँगा, और हमारे साथ इस वक्त एहसन अब्बास साहिब मौजूद हैं, बिरमिंगम से हमारे साथ ये मौजूद हैं, मशहूर कॉलमिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मैं उनको स्टूडियो में खुश आमदीद कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम जी।
जी आगा सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम जी। जी शुक्रिया सलमान
जी। आगा आप खैरियत से हैं?
जी अल्लाह का शुक्र जी
अल्हम्दुलिल्लाह। अगर सबसे पहले तो हमने अभी तक दो टॉपिक जो हैं वो डिस्कस किए, एक तो ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं उसको हमने डिस्कस किया, और इसके अलावा इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का जो मरकज़ी कन्वेंशन मुनक्किद किया गया लाहौर में उस हवाले से गुफ्तगू की, और जो तालीमी इदारों में दहशतगर्दी के अनासर जो हैं उनको परवान चढ़ाया जा रहा है वो भी हमने डिस्कस किया। सबसे पहला सवाल मैं आपसे एक्चुअली ये बात तो तालिबान के हवाले से करना चाह रहा था और जो इमरान खान साहब ने बयान दिया, लेकिन मैं आपसे चाहूँगा कि आप एक मिनट में अगर मुझे ये भी बता दें कि जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ तालीमी इदारे हैं उनमें जो दहशतगर्दी के अनासर को फ़रोग दिया जा रहा है, मुख्तलिफ असलाह वहाँ से मिल रहा है और हुकूमत छापे मार रही, उस हवाले से आप क्या कहेंगे?
जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी शुक्रिया सलमान, आपने इजहार ख्याल से दावत दी। ये जहाँ पूरे मुल्क में दहशतगर्दी के फ्लो की बात हो रही है वहाँ तालीमी इदारों में जो दहशतगर्द तंजीमों को पाला जा रहा है ये बहुत पुरानी बात है, ये नई बात नहीं है। आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर देख लें, जरिए यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में देख लें, पंजाब यूनिवर्सिटी में देख लें, यहाँ दहशतगर्द तंजीमों के बाकायदा विंग बने हुए हैं और ये भत्ताखोरी करते हैं, अगवा बर तवान की वारदातें करते हैं। ये शायद कुछ लोगों के इल्म में होगी ये बात कि जब ये सलमान तफसीर का जो बेटा है शहबाज तफसीर वो अगवा हुआ, उसे बेसिकली यूईटी के लड़कों ने अगवा किया था जिनका ये लश्कर तैयबा से ताल्लुक था, उसके बाद उन्होंने फरोख किया था उसको तालिबान के हाथों में। तो ये तो बाकायदा जो है वो अदारों में ये भी साजिश के तहत जहाँ मुल्क के दीगर हिस्सों में दहशतगर्दी को परवान चढ़ाया जा रहा है वहाँ।
अभी जो मरकजी सदर, आगा मैं आपकी बात से टोकना चाहूंगा, अभी जो मरकजी सदर ने ये पॉइंट रेस किया कि हम इसका राह हल यानी तलाश करने की कोशिश करें, जो उन्होंने मुझे बताया कि हमें सबसे पहले तो यूनिवर्सिटीज के हॉस्टल्स को असले से ही पाक करना होगा, तो आपके ख्याल में राह हल क्या होना चाहिए?
जी असले से पाक किया जाए और जो गैर तालीमी अनासर हैं, जो कब्जा ग्रुप हैं जिन्होंने सालों से कमरों पे कब्जे किए हुए हैं उनको खिलाफ भी ऑपरेशन क्लीन अप होना चाहिए, और इसमें यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है या कॉलेज के सरबराह हैं उन्हें आजादी होनी चाहिए। जो मैं समझता हूँ कि आजादी उन्हें नहीं है, क्योंकि दहशत गर्दों का पाकिस्तान पे अमलन जो है वो कंट्रोल हो चुका है।
बिल्कुल आगा, इसके हवाले से बहुत शुक्रिया आपने कि इस पे अपने ख्याल का इजहार किया। मैं दोबारा अपनी गुफ्तगु पे आना चाहूँगा कि जिस तरह इमरान खान साहब ने यह बयान दिया कि तालिबान को जो है वो पाकिस्तान में भी दफ्तर खोलने की इजाज़त दी जाए और उनको एक ऐसा स्टेटस दिया जाए, यानी कि उनको एक रिकग्नाइज किया जाए ताकि हम उनसे निगोसिएशन कर सकें, तो इस हवाले से मैं पूछना चाहूँगा कि हमारे पास अभी प्रोग्राम ख़त्म होने में 5 मिनट बाकी हैं, तो अगर आप इसमें समराइज कर सकें कि इमरान खान साहब को ये क्या ज़रूरत पेश आई कि उनको ये बयान देना पड़ा, और तालिबान जो निहत्ते लोगों पर जुल्म कर रहे हैं, आए रोज़ जुल्म कर रहे हैं, और आज भी जिस तरह मैं ये खबर पढ़ रहा था कि उन्होंने कहा कि चर्च पर हमला हमने नहीं किया लेकिन यह शरीयत के मुताबिक था, तो इस तरह के लोगों को प्रोटोकॉल फराहम करना, उनके दफातर खोलने की बात करना, जब आप एक नए पाकिस्तान का नारा लगा रहे हो, तो इस हवाले से आप अपनी गुफ्तगू फरमाइएगा।
जी जी सलमान, मेरे ख्याल में इमरान खान साहब से थोड़ी सी जल्दी हुई है। वो जो उन्हें एजेंडा दिया गया था ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को तकफीरी जमहूरिया पाकिस्तान बनाने का, वो आहिस्ता आहिस्ता अपने एजेंडे की तरफ बढ़ रहे थे। ये बयान देके उन्होंने अपना जो एक नकाब था उसको एकदम उलट दिया है ना। दफ्तर देखें बनाया जाता है या तो सियासी तंजीम का दफ्तर होता है या फलाही तंजीम का दफ्तर होता है या मजहबी तंजीम का दफ्तर होता है। जहां तक सियासी ताल्लुक है, तालिबान जमहूरियत को मानते ही नहीं है, ठीक है, सियासी उनका बात बनती नहीं।
बल्कि अगर मैं आपकी बात टोकना चाहूंगा, आप बात कर रहे हैं कि तालिबान जो है वो जमहूरियत को नहीं मानते, बल्कि मैं तो कहूंगा कि वो तो इंसानियत को जो है उसको भी नहीं मानते, इसलिए तो वो जिस तरह के वो मुख्तलिफ ही, आपने देखा होगा कि कितने सालों से वो मासूम लोगों को निशाना बना रहे हैं और एक नहीं हजारों लोगों को वो कत्ल कर चुके हैं, तो इसके बाद इस तरह का सॉफ्ट हार्टेड होना तालिबान की तरफ, तो ये बिल्कुल एक, यानी कि अगर इसमें कहा जाए कि इसमें
मैं आपको कहता हूँ कि ये मैं कह रहा हूँ कि सियासत को वो मानते नहीं है या फलाही तंजीम का दफ्तर होता है। फला उनकी ये है कि वो स्कूलों को उड़ाते हैं, मस्जिदों को उड़ाते हैं, जनाजे के जुलूसों पे हमला, हॉस्पिटल्स को उड़ाते हैं, फलाही तंजीम ही नहीं है। बाकी रह गई किसी मजहबी तंजीम हो, चलो अगर वो बरेलवी इस्लाम के नुमाइंदा हैं तो वो मज़ारों को क्यों उड़ाते हैं, वे पीरों को कब्रों से निकाल के क्यों लटकाते हैं, अगर वो देवबंदियों के नुमाइंदा हैं तो मौलाना हसन जान को क्यों शहीद किया, उन्होंने काजी हुसैन अहमद पे हमला क्यों किया है, अगर वो अहले हदीस के नुमाइंदे हैं तो कितने अहले हदीस उलमाए मौलाना इसहाक साहब वफात पा गए, उन पर भी कातिलाना हमला किया था। शियों के नुमाइंदा तो यकीनन है ही नहीं है, ये ना किसी मजहब के नुमाइंदा है, ना किसी फलाह के नुमाइंदा है, ना किसी सियासत के नुमाइंदा है। किस चीज का दफ्तर इमरान खान खोलना चाह रहे हैं? इसका सिर्फ इस चीज का दफ्तर कि इस पाकिस्तान पे पहले ही एस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पर फौजी कब्जा कर चुकी है, एक जमहूरियत हमारे पास रह गया था कि जहाँ लोग अपनी राय का इजहार कर रहे थे, अब ये जमहूरियत में ये तकफीरियों को काबिज कराना चाह रहे हैं ताकि जगह जगह इनके दफ्तर खुले और अमलन पाकिस्तान पे जमहूरियत जो है वो सिस्टम है उस पर भी ये तकफीरी काबिज हो जाए। यही एजेंडा था जिसपे इमरान खान साहब को स्लोली लाया जा रहा था, लेकिन अभी जो खुल के वो सामने आ गए हैं और जो काम इमरान खान कर रहे हैं ये पाकिस्तान में एक नया ज़ियाउल हक जो है वो जन्म ले रहा है। मैं गुज़श्ता जब से ये सुनामी हुई है मैं उस वक्त से ये मुसलसल लिख रहा हूँ और बहुत ज्यादा तनकीद का मुझे निशाना बनाया गया है, लेकिन जो है वो मेरी बात कल भी उसी पे कायम थी और अब तो अल्लाह का शुक्र है लोग उस बात को मानने लगे हैं।
अगर आपसे यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन करूंगा कि पाकिस्तान के जो हालात इस वक्त आप देख रहे हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है और महंगाई का जो एक तूफान खड़ा कर दिया गया है नवाज हुकूमत की जानिब से, जो नॉन इश्यूज हैं उनको इश्यूज बनाकर डिस्कस किया जा रहा है लेकिन इश्यूज की तरफ कोई बहस नहीं की जा रही, तो पाकिस्तान की हुकूमत जो है उसके हालात को आप किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं?
बेसिकली जो नवाज शरीफ साहब हैं ये सरमायाकार हैं और सरमायाकार का एजेंडा ही यही होता है कि जो है वो गरीब का खून चूसा जाए, उसको निचोड़ा जाए और जिस तरह भी मुमकिन है अपने एजेंडे को आगे बढ़ाया जाए। ये जो दहशतगर्दी का एजेंडा है ये भी उसके साथ शामिल है और दहशतगर्दी करने का मकसद ये है कि अवाम को बम धमाकों में, खुदकुश हमलों में इतना पीस दिया जाए कि जो ये महंगाई कर रहे हैं, दीगर काम कर रहे हैं, उसकी तरफ कोई तवज्जो ही ना देने पाए। और वतन बहुत ही मुश्किल हालात से गुजर रहा है और हर शख्स की जिम्मेदारी है कि वो सियासी शऊर हासिल करे और जिस हद में मुमकिन हो इस जुल्म और सितम के खिलाफ आवाज बुलंद करे।
बहुत शुक्रिया आगा जान, वक्त की किल्लत की बाइस जो है हम अपनी गुफ्तगू ज्यादा देर तक जारी नहीं रख पाएंगे, लेकिन आपका फिर भी शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला।
थैंक यू वेरी मच सलमान, माय प्लेजर।
अपनी खसूसी दुआ में याद रखिएगा।
ठीक है, ठीक है, शुक्रिया जनाब।
जी नाज़रीन, जैसा कि आपने गुफ्तगू फरमाई, आज के प्रोग्राम में हमने काफ़ी टॉपिक्स को डिस्कस करने की कोशिश की, ईरान और अमेरिका के जो गुफ्तगू है उसको डिस्कस करने की कोशिश की। इसके अलावा पाकिस्तान में जो तालीमी इदारों का जिस तरफ वो बढ़ रहे हैं, दहशतगर्दी के अनासिर हैं उनमें, और जिसको बैरूनी ममालिक की जानिब से सपोर्ट किया जा रहा है उसको हमने डिस्कस करने की कोशिश की। इसके अलावा तालिबान के हवाले से कि वो किस तरह मासूम लोगों को काफ़ी अरसे से निशाना बना रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ रहनुमा जिन्होंने नए पाकिस्तान का नारा लगाया लेकिन वो उनकी तरफ नरम दिली रखते हैं, और इसका मुजाहरा इन्होंने पिछले दिनों मीडिया में आकर भी किया। नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना फीडबैक देते रहिएगा प्रोग्राम के हवाले से। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे फिर नए टॉपिक्स के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।